आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारे लिखे समय सार
गाथा 38 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए और ऊर्जा टकाते चित्त भावाय भावाय सर भावान्तर।
आचार्य कुंडकुंड देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया, इसकी गाथा नंबर 38 में अपन ने आरंभ की थी, उसकी टीका की आरंभिक 4 पंक्तियों पर चर्चा की थी। मैं आज जो 4 बोल हैं, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन मैं हूँ और मैं अरूपी हूँ, उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें एक शुद्ध नामक बोल को लेकर के पहले बात शुरू करता हूँ। वैसे एक से शुरू करना चाहिए थी, लेकिन अभी तो सब अस्थिर काम है ना, दूसरा इसके बाद व्याख्यान इसका होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण बात मेरे को ख्याल में आती है वो मैं पहले लेता हूँ, तो समय के अनुसार जैसा होगा जैसी बात करेंगे। अबू लाली साहब, शुद्ध की व्याख्या में इसमें लिखा है कि नर नारक आदि जीव के विशेष अजीब पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नर तत्व है उनसे टंकोत्कीर्ण एक व्यायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ, इसलिए शुद्ध हूँ। माने शुद्ध का क्या अर्थ, शुद्धता तो कई प्रकार की होती है ना, अपन ने सुबह उठ के नहाए धोए तो शुद्ध ही होके आए ना, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के पूजा करने के लिए आना वो भी शुद्धि है, और सोला का भोजन है वो भी शुद्धि है, और राग द्वेष मोह से रहत आत्मा का होना वो भी शुद्धि है, और जिनवाणी में अनेक प्रकार की शुद्धियों का कथन है। भेद कल्पना करना उसका नाम भी अशुद्धि है, और भेद की कल्पना नहीं करना उसका नाम शुद्धि है। नहीं, भेद कल्पना निरपेक्ष, जो उत्पाद वै सहित है आत्मा ये कहना भी अशुद्धि है, और उत्पाद वै से रहित है ये कहना शुद्धि है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द कहा है उसका क्या अर्थ है, इसी गाथा के संदर्भ में मैं आपको समय सार की 73वीं गाथा की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी भी पहली पंक्ति में यही बात कही है, अहम एको खल शुद्धो नान समग्गो है ना, निम्नमयो नान दंशन समग्गो। पहली पंक्ति जो आधी पंक्ति दोनों एक ही है, अहम एको खल शुद्धो, एक हूँ और शुद्ध हूँ, वहाँ भी कहा है और यहाँ भी कहा है, और वहाँ आचार्य अमृत चंद ने टीका लिखी दोनों गाथाओं की एक ही ग्रंथ में, और वहाँ अर्थ किया कि सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार जो निर्बल अनुभूति मात्र है उसे शुद्ध कहते हैं। सकल कारक चक्र प्रक्रियो त्यूनत्वात् शुद्धम, ऐसा अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धम ऐसा कहा है, और यहाँ कहा है जीव के विशेष नरनारकादि अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष इन 7 तत्वों से पार है ना, ये बात कही ना, एक टंको 3 ग्यायक भाव के द्वारा इनसे भिन्न उपासित होता हुआ यहाँ पर इसको शुद्ध कहा है। तो ये जब एक ही शब्द है, एक ही आचार्य है, गाथा भी एक ही आचार्य की और टीकाकार भी एक ही आचार्य, तो ये अर्थ में अंतर क्यों, कोमल जनी सर ये सोचने की बात है। एक गाथा ऐसी है जो कुंद कुंदाचार्य के 5 ग्रंथों में आती है, जिसमें समय सार की 49वीं है, नियम सार की 46वीं है, प्रवचन सार की 172वीं है, पंचाशिकाय की 127वीं है ना, और अष्टपहर में भी भाव पहर में है, ऐसों से प्रसाद जो भी गाथा है, इस तरह कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में है, और उसके अलावा सतखंडागम वगैरह में भी वो गाथा पाई जाती है। खैर अब तो अलग अलग पाई जाती है, उसकी चर्चा में विस्तार से यहाँ नहीं करता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उस गाथा कुंड कुंड के 3 ग्रंथों की टीका अमृत चंद आचार्य ने लिखी, समय सार की आत्मख्याति, रोचन सार की तत्व प्रदीपिका और पंचाशिकाय की समय व्याख्या, और इन तीनों में उसके तीन अलग अलग अर्थ किए। क्या था? एक खासकर आलिंग ग्रहण हरेक में किए दे सको, अरस के इसमें छह छह अर्थ किए और उसमें एक सामान्य सा ही अर्थ कर दिया बस। लेकिन आलिंग ग्रहण के उसमें 20 बोल किए, ऐसे बिल्कुल सारा अर्थ कर दिया, समय सार में सारा कर दिया, पदन सार में 120 अर्थ किए। ये आचार्य ऐसा क्यों करते हैं? अपना पांडित्य दिखाने के लिए करते हैं। उत्तम चंद जी साहब कि मैं भी है, देखो 20-20 अर्थ कर सकता हूँ, तुम समझते क्या है, मुझे साधारण पंडित मत समझ लो। भाई एक ही शब्द है, एक दफे बोले तो उसका अलग अर्थ, दूसरी दफे बोले तो उसका अलग अर्थ। दो आचार्य अलग अलग करे तो हम समझे भी दोनों की बुद्धि अलग अलग काम करती थी, उन्होंने किया वो समझ में आता है। मान लो दो ग्रंथ है साहब, वो ज्ञान प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, ऐसे ज्ञान प्रधान में अलग अर्थ किया, श्रद्धा प्रधान में अलग किया। क्यों कबूचंद जी साहब? लेकिन एक ही समय सार ग्रंथ, एक कुंद कुंद आचार्य और उनके वो एक ही अम्बेडकर टीकाकार, उसमें ही दो जगह वो शब्द आ रहे कि मैं एक हूँ और मैं शुद्ध हूँ। तो यहाँ शुद्ध हूँ का अर्थ करें अलग और वहाँ शुद्ध हूँ का अर्थ करें अलग, ऐसा क्यों? प्रभुजनी साहब ख्याल में ही मैंने किसी भी ख्याल में ऐसा क्यों किया? मैंने वह सोचा कि यहाँ तो ऐसा अर्थ कर रहे हैं और वहाँ ऐसा अर्थ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या था मेरी साहब? उसके पीछे मैंने देखा ये बहुत कारण है कि समय सार के पूरे ग्रंथ का उद्देश्य एक त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है, जिसका ध्यान करने से अंतर मुहूर्त तक करे तो केवल ज्ञान की गारंटी है, अनंत आनंद जिसे प्राप्त होता है, वो भगवान आत्मा का स्वरूप बताना इस संपूर्ण समय सार का एकमात्र उद्देश्य है। अब इनमें क्या सबसे बड़ी बाधा है, क्या गड़बड़ियां होती हैं जिनकी वजह से हम उस भगवान आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको शोध शोध के निकालना हमारे अंदर में झांक झांक के और उनका निषेध करना, ये आचार्य देव का मुख्य उद्देश्य रहा कि जिससे कहीं कोई चक्कर रह नहीं जाए। तो उन्होंने ये देखा कि पर से भिन्न अपना भगवान आत्मा, देह से भिन्न, राग से भिन्न, जो भी है पर्याय से भिन्न, ऐसा जो भगवान आत्मा है, तो इसको आत्मा को आत्मा मानने में चार प्रकार की गलतियां होती हैं। युवराज जी साहब वे कौन कौन सी हैं? एक सबसे बड़ी गलती तो ये है कि किसी ना किसी पर पदार्थ को, जिन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो देह आदि पुद्गल पर पदार्थ जिसे हम कहते हैं, दूसरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले विभाव रागादि विकारी भाव, और तीसरी अपनी निर्मल पर्याय अथवा रंग राग और भेद से भिन्न गुण भेद वगैरह। ये तीन भागों में हमने पर पदार्थों को माना, तो इन तीन में से किसी ना किसी को मेरे अपनापन स्थापित कर लेता है। अपनापन स्थापित कर लेता है माने अहम बुद्धि कर लेता है, अहम बुद्धि माने एकत्व बुद्धि कर लेता है, एकत्व बुद्धि माने ये सब पर्यायवाची शब्द है, अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, अपनापन, यानी ये मान लेता है कि ये ही मैं हूं। सबसे पहली गलती तो ये है, सबसे मोटी गलती, पहली और मोटी गलती। देखो मैं पंडित हुकुमचंद, तो देह का पिंड है, देखो जब मैं पंडित हुकुमचंद में अपने को मानता हूँ, तब अकेले शरीर में ही अपनापन नहीं करता हूँ, बल्कि जो मेरे अंदर राग देश है उनमें भी अपनापन करता हूँ, जो ज्ञान का क्षोभसम है उसमें भी अपनापन करता हूँ। मैं विद्वान तो मेरे ज्ञान के क्षोभसम में किया क्यों? देखो भाई ऐसा बात नहीं हूँ कि मेरा मैं बराबर जैसे के लिए तैसा हूँ, क्यों रागी से राग करता हूँ, देशी से देश करता हूँ। अभी इसने क्या कहते रहे, सारी जगह जैसे को तैसा होती है, बोलते नहीं बोलते? मैं नरम के लिए नरम हूँ, गर्म के गर्म के लिए गर्म हूँ, तुम ऐसा मत समझना है। इनको तुम बहुत बड़ी क्वालिटी समझ रहे हैं अपनी। अरे ये तो कुत्ते का भी यही स्वरूप है, एक रोटी का टुकड़ा बिका इसको पूछ लाता है क्यों, और जरा सा डंडा दिखाए तो भोंकना शुरू कर देता है, उसमें तू क्या गजब करता है, इसमें तेरी कौन सी महिमा की बात है, इसको तुम बड़े गौरव से बात कह रहा है, इसमें ऐसा है क्या? क्यों पंडित साहब, पंडित साहब बता रहे थे ना कि थोड़ी रोम में आग लगा दो, देखे लोग कैसे तड़पते हैं। वो तो ये कह रहे थे कि अपने आत्मा में राग द्वेष की आग लग रही है और हम मजा देख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे घरों में हम रोजाना एक रोम में आग लगाते हैं,
ये आलू खाते हैं ना और तवेली में वो पलते हैं, उसमें अनंत जीव है कि नहीं है, मतलब किस जीव को पता नहीं है, मैं यहां से पूछता हूँ, क्या बन गई कि नहीं बन गई, उबल रही है, तुम भी खुश होते कि नहीं हो गए, लपलपाती है जीव, वो रोम के राजा से कम हो गया क्यों? तो, जी जिन जीवों में अनंत हिंसा हो रही है वो हमारी भोग सामग्री बन रहे हैं, उनको पकते बनते देखकर हम प्रसन्न हो रहे हैं, कौन है रोम के राजा से कम? ये मत समझना जहाँ वो गया होगा वहीं अपन को जाना है, यदि ऐसे है तो सोच लेना अच्छी तरह से, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई मेरी बात घर की बात नहीं है, ये तो सर्वज्ञ भगवान की कही हुई बात है। क्यों तो अपनी बात चल रही थी कि एक पहला सबसे बड़ा दोष तो ये है कि उसमें हम अहम बुद्धि कर लेते हैं, ये मैं हूँ इसका नाम अहम बुद्धि, इसी का नाम एकत्व बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एक आप एक पना किया, इसी को अपनापन भी कहते हैं, और सीधी भाषा में तो कहो ए ही मैं हूँ ऐसा मानना, पहली गलती तो ये होती है सबसे बड़ी, कदाचित किन्हीं कारण बस चाहे वे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, लौकिक माने ए कि हमें मालूम पड़ जाए कि यदि ये मैं होता, बेटा और पत्नी मैं होते तो ये तो बंबई चले गया और मैं तो यही रह गया, ऐसा कैसे होता, ये तो लौकिक कारण हुआ, और गुरु ने समझाया शास्त्र में लिखा मिला के सुधारा हुए न सीरी सब स्वारत के हैं बीवी, ये समझ ले अलौकिक शास्त्रीय कारण हुआ, किन्हीं कारण से कदाचित स्त्री पुत्र मकान जायदाद और देह से भिन्नता भासित हो, तो क्योंकि इसे तो उससे संबंध तो कायम रखना है, वो तो मैं किसी कीमत पर तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए कहता ठीक है ये शरीर मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा तो है ना, ऐसा एकत्व बुद्धि टूटती है तो ममत्व बुद्धि के नाम से पकड़ लेता है, स्वामित्व बुद्धि के नाम से पकड़ता है, ममत्व और स्वामित्व का एक अर्थ है, ये मेरा है इसी का नाम ममत्व है और मैं इसका स्वामी हूँ, इसका अर्थ भी यही तो होता है कि ये मेरा है, इसलिए स्वामित्व बुद्धि भी इसे कहते हैं, देखो एक घड़ी मेरी है अथवा मैं इसका स्वामी हूँ, एक ही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ, ये जो मेरा शब्द है वो स्वामित्व का द्योतक है, ये जिसको बोलते हैं स्वामित्व बुद्धि, अहम बुद्धि और बोलते हैं ममत्व बुद्धि अथवा एकत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि, तो यदि इसका एकत्व से मोह कदाचित टूटता दिखे तो ये स्वामित्व बुद्धि कर लेता है, क्योंकि इसे संबंध तोड़ना नहीं है किसी कीमत पर, उस बच्ची की तरह जो 5 बरस की है और अम्मा उसे छोड़कर मंदिर जाना चाहती है, और जब वो कपड़ा पहनती है मंदिर जाने के लिए तो वो समझ जाती है कि अम्मा मंदिर जाएगी मुझे छोड़ के भागेगी, तो बराबर ड्यूटी लगाकर वही खड़ी रहती है, और वो कुछ न कुछ झक्कू देकर निकलने की कोशिश करती, रोजी ना का धंधा है, क्यों तो वो आकर के उसे साड़ी का पल्लू पकड़ लेती है, अब कहाँ जाएगी, माँ उसे बहुत समझाती है मनाती है धमकाती है लोभ देती है चॉकलेट वोकलेट देने का, लेकिन वो नहीं मानती है, तो वो जोर से हाथ दबाती है, आखिर माँ का कठोर हाथ और कोमल बच्ची का हाथ दुलीचंद जी कब तक पार पड़ेगी, आखिर तो साड़ी उसको छोड़नी ही पड़ेगी ना, तो वो समझती है कि मैंने साड़ी छोड़ी और वो भागी, क्यों होता क्या नहीं होता, तब वो क्या करती है कि अब ये हाथ छूटा तो उसे छोड़ने के पहले दूसरे हाथ से दूसरा पल्लू पकड़ लेती है, क्यों अरे माँ छोड़ा रही है जाने देना मरने दे जाना है छोड़ देना इतना कि नहीं साहब मरने कैसे दू वो थोड़ी मरेगी मरूंगी तो मैं, यानी उसके जाने में उसे अपनी मौत दिखती है इसलिए हर कीमत पर उसे पकड़ने चाहती है, ऐसे ही इस शरीर आदि पर पदार्थों में क्षयोत्सम ज्ञान में अथवा रागादिक में जो हमारा एकत्वपना था आचार्य देव बहुत समझाकर बुझाकर धमकाकर नहीं ऐसा नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे ये धमकाना है भैया क्यों, और तुम मान लोगे तो सुरक मोक्ष मिलेगा ये पुटियाना है फसलाना है क्यों, बहुत आचार्य देव कहते हैं लेकिन ये नहीं छोड़ता है तो वे तर्क और युक्ति के दे देकर ऐसा हाथ दबाते हैं जोर से अब आचार्य इतने ताकतवर तर्कवान और हम कहां स्थूल बुद्धि वाले, तो तर्क की कसौटी पर सामने हम खड़े रह नहीं सकते, तो वे हमें छुड़ाते हैं। अब समझते, अब तो हमें एकत्व की बात छोड़ना ही पड़ेगी। तू समझता है कि मैं शरीर हूँ, अरे शरीर यही पड़ा रह जाएगा और तू चला जाएगा। क्यों आचार्य देते नहीं देते? सैकड़ों लोग चले गए, शरीर को जला दिया और आत्मा चला गया। तो उन तर्कों की मार से यदि हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं चलेगी, अब तो छोड़ना ही पड़ेगी ये एकत्व बुद्धि, तो फटाफट ठीक है ठीक है, शरीर में नहीं हुए बात पक्की, लेकिन है तो मेरा ही ना, ऐसा ममत्व बुद्धि से दूसरी तरह से उसको पकड़ लेते हैं, दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। एक हाथ से छोड़ते हैं तो दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ लेते हैं? अरे व्यापारी तो बहुत होशियार है, अभी इतनी जमीन है हमारे पास और इतना पैसा हो गया है, तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इतनी इनकम हो गई है, ये भी सीलिंग में आ जाएगी ना। तो कितनी कितनी तरकीबें लगाते हैं वकील साहब, चंद जी कहा ये तो वकील वकील मिट गए, कहा के वकील है, तो हमारे वकील है, ये बच्चे हो गए होंगे। क्या साहब वो तरकीब बताओ, एक पैसा जाए नहीं और अपना बच का बच जाए, एक गवर्नमेंट के कानून में हमारा कहलाए नहीं और रहे हमारा ही, क्यों? इसका ही नाम तो वकील है और क्या और क्या है? अरे ठीक है, उसमें क्या है कि पांच चार बच्चों के नाम कर, बच्चे चार हो और क्या था, एक ही है तो उनके नाम कर दो, जो पेट में है उनके नाम कर दो, एक बरस का है उसके नाम कर दो, एक कर दो, ट्रस्ट बना दो और ट्रस्ट के नाम कर दो, फिर ट्रस्ट करके अपने कब्जे में रख रखा करके फिर अपने ही उपयोग, कोई ना कोई तरकीब से कैसे बचाना। क्यों जैसे गवर्नमेंट की मार पड़ती है और वकील से सहयोग से बचाते हैं, ऐसे ही आचार्यों की मार पड़ती है, आचार्य हमारे गवर्नमेंट है क्या, और हम किसी न किसी रास्ता से एकत्र तो नहीं तो ममत ममत नहीं तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से उसको हम पकड़ लेते हैं। साहब ने बड़े बड़े टेस्ट बना लिए हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बना लिए हैं तो, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? एक दफा मैंने साहब 5 करोड़ का टेस्ट बनाया, एक दफा 5 करोड़ का दान दे दिया, बना दिया, अब रोज ही ना उस टेस्ट में से देते हैं उसका ब्याज आके दान, तो फिर दे रहे हैं एक एक दान को 6 रुपए देते, अब तुम्हारा क्या है? अब तुमने पैसे बना दिया, दान दे दिया ना, अब तुम्हारा क्या है? नितिन जी सारी जिंदगी उसमें देते थे, बोली भी उसमें से लगाई, अब जो कुछ करना हो करना, मेरी बात से कुछ नहीं है, तुम्हारा मेरा 1 घंटा अलग है, तुम्हारे बाकी 22 घंटे अलग है, समझ लेना तत्व की बात जो है बस, यही तुमको क्या साहब, ये गड़बड़ मत करना, वैसे क्या वैसे चालू रखना पाप माफ जो भी करते हो, नहीं करते ना, वो सब तरकीबों से लगा लगा कर कैसे इसको बचा के साहब पंडित जी एक नया कानून निकला है, तो 10 साल तक प्लानिंग दे दो कि हम ऐसा करेंगे तो आप बचा सकते हो, 10 साल तक फिर आप धीरे धीरे कर सकते हो, वो 10 साल बाद फिर सोचेगा इसको अब कैसे हो, 10 साल जब तक मरेगा नहीं तब तक वो बराबर, तो जितनी चतुराई जो गवर्नमेंट के साथ बरतता है उससे ज्यादा आचार्य भगवानों के साथ बरतता है, तो यदि एकत्व तो नहीं रहे तो मैं नहीं तो मेरा तो है, ऐसी ममत्व बुद्धि से ये संबंध को कायम रखता है। फिर कह भी तेरा भी नहीं है, अब ये टेस्ट बन गया तो तेरा थोड़ी रहा, तू तो टेस्टी है, वो टेस्टी का मतलब समझता है कि तेरे पर विश्वास किया गया है कि तू इस प्रॉपर्टी का अपने लिए यूज नहीं करेगा, और जिस उद्देश्य से ट्रस्ट बनाया है उस उद्देश्य में ही ये खर्च करेगा, है कि नहीं? इसमें लिखा जिनवाणी का प्रचार करेंगे, मैंने कहने ये सब लिखा के नहीं लिखा है, फटाफट उसमें हिला के खुद पढ़ता है, जिनवाणी का प्रचार हो रहा है ना, नहीं पढ़ रहा हूँ ना, उसी में से खरीद लेता, उसी में से लिख देता, उसी में से सब करता रहता, अपने लिए यूज करता रहता, मैं इसी काम के लिए तो क्या रास्ते में टिकटों में प्लेन के टिकटों में खर्चा भी मारता रहेगा, सब हिसाब किताब लगा लगूंगा किसी तरीके से, क्यों नाम कृष्ण का रखकर और फिर उनके लिए अपने लिए यूज कर, कोई पूछने वाला तो है नहीं, संजय भाई कोतवाल से डर जाएगा, खुद ही टेस्टी खुद ही सब, क्यों समझते जी, कोई अकाउंट रखने वाला नहीं, देखने वाला, पूछने वाला नहीं, धीरे धीरे वो सब चीजें हमको इतनी उचित लगने लग गई है कि कोई अनुचित ही नहीं लगता है। तो सब ही कर रहे हैं ना, जो सब करे वो सब उचित हो जाता है। बस तब हिंसा हो जाए, झूठ हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, परिग्रह हो, क्यों उत्तम चंद जी जो नहीं करते उनके मन में भी पानी आ रहा है, अपन भी कर लो ना, कुछ नहीं कर सकते। समाज से जोड़ जाड़ के करा लो, अपन कर लो, अपन ही जगह जहाँ जगह देख घोषणा कर लेंगे देने लेंगे। तो ममत्व बुद्धि के बाद में एकत्व के बाद ममत्व बुद्धि, तो कहे तेरा नहीं है भाई साहब, तू तो टेस्टी है। और टेस्टी माने झाड़ू लगाने वाला, टेस्टी माने उसकी सुरक्षा करने वाला। चोर आवे तो उससे तू लड़, डाकू आवे तो उसकी सुरक्षा के लिए लड़ जान की बाजी लगाकर। ख्याल में है ना, तेरे को तो टेस्टी है माने मौत लिखी है तेरे नाम, उसकी सुरक्षा में तुझे मरना पड़ेगा और उसका एक पैसा अपने लिए खर्च कर नहीं सकेगा, इसका नाम टेस्टी है। बोलो बनना है जी। वो तो पहले निकल चुका ना, वो तो दान हो चुका ना, जब ये तरह तुम ट्रस्ट बना दिया करो राम किशोर जी, तो दान हो गया कि नहीं हो गया? अब वो तेरा कहाँ है? तो ये तो तूने मान लिया कि मैं नहीं हूँ, तो मेरे के नाम से तो तेरा नहीं है धन। अब आचार्य ने एक चोट लगाई तो कहते ठीक है मेरा नहीं है, ये बात पक्की है, मैं मानता हूँ, ट्रस्ट कानून को भी समझता हूँ, लेकिन इसका कर्ता धरता तो मैं ही हूँ ना, मेरी मर्जी के बिना पत्ता तो नहीं हिलेगा ना इसमें। तो यदि एकत्व टूटे ममत्व टूटे तो कर्तृत्व के नाम से अपना संबंध उससे जोड़े रखता है। आचार्य कुंद कुंद ने ये बात समझ ली थी कि किस तरीके से पर पदार्थों से अपने को जोड़े रखता है, इसलिए कोई रास्ता ऐसे बनियों को बचने नहीं दे। गवर्नमेंट जितने कानून निकालती है बनिया उसके पहले उसकी काट निकाल लेते हैं, और बनिया जितनी काट निकालते हैं अगली गवर्नमेंट फिर उसके विरुद्ध कानून बनाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी तो बनियों में से ही बनती है ना, सारी गवर्नमेंट भी बनिया हो गई है, ये भी सब व्यापार करने लग गई है, क्यों? फिर वो उनके काट निकालते हैं, इनके साथ कैसे काट करना, क्यों उसकी ये काट निकालता है, ऐसे ही धंधा बराबर चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है। तो ये एकत्व मत तोड़ता है तो कर्ता बनता है कि मैं इसका पूरा वो कर्ता धरता मैं हूँ, मालिक नहीं। तो मालिक तो गया उसमें दूसरे नंबर में। फिर वो कहता है कि भाई साहब ये मैंने पुस्तकालय बनाया, अब मैं नहीं हूँ, अब ये मेरा नहीं है, अब तो तस्य का हो गया ना, अब मैं इसका कर्ता धर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन इसका उपयोग तो कर सकता हूँ ना, भोगता तो हूँ ना, वो तो सारी जनता है भोगता, तो मैं ऐसा अलग कैसे हो सकता हूँ उससे, क्यों? और साले खोल दिया सेठ जी ने, दान दे दिया, मालाएं पहन ली 3 करोड़ का, 2 करोड़ का, जो भी किया हो, मालाएं पहन पान करके डॉक्टर नियुक्त हो गया, दवाइयां हो गई, सब बात दान में। उस डॉक्टर को दिन में 3 नजर घर पे बुलाते बिना फीस दिए, और उस जगह जाते वो साले में जमा हो जाए, डॉक्टर ले रहे लेकिन वो खुद लेते। अरे इस दान तू ले रहा, तू दिया, तू ले, पब्लिक है ना, मैं भी पब्लिक हूँ ना, तो पब्लिक की वजह से ले रहा, तो जा बेटा लेन में खड़ा हो, और जैसी पब्लिक लेती है ना, जैसी ले तो तुझे मालूम पड़े। वो एक अभी एक हमारा जो मिनिस्टर है ना, शुक्ला में क्या नाम, वो जो टेलीफोन वेलीफोन का है क्या है, हाँ, तो उससे कहा कि भाई वो अदालत मदालत करते हैं, तो अदालत में उसे कहा तुम्हें क्या सजा दी जाती है, कि तुमको ये सजा दी जाती है कि तुम्हारे सारे फोन काट दिए जाएं, और फिर तुम उन फोनों के कनेक्शन द्वारा साधारण जनता की हैसियत से लेके देखो बेटा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक टेलीफोन का कनेक्शन कट जाने के बाद में वो इतना जुड़वाने में कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, बिना ही कसूर के कट जाए, समझ में आया कि नहीं? यदि तुम पब्लिक हो तो बेटा लाइन में खड़े होकर के लो दवाई, तो हम जाएंगे तुम पब्लिक हो। अब उस डॉक्टर का यूज तुम कैसे कर सकते हो, कर रहे कि नहीं कर रहे, किसको दे दिया दान, वो निर्माल का कौन खा रहा है, निर्माल है वो तो जो कुछ भी है, तो अरे वो जिनके लिए तुमने खोला है वो तो निर्माल है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए है वो, अब उनके लिए था उसमें से तुम खाए, हड़पने वाले हो तुम, मैंने दिया नहीं हड़पने वाला, हाँ क्योंकि तुमने डिक्लेयर कर दिया ये मेरा नहीं है, ये गरीबों के लिए है, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं वो आकर के दवाई खा रहे, क्यों? ये सब उनका है ना, उसमें से तूने 200-500 रुपए अपने पर खर्च कर लिए, तो उनका काटा है, उनका तू कर्जदार है। वो तो क्या समझता है जी, क्या समझता है, तुम्हें भी यही करता है, करता हूँ करता नहीं तो भोगता तो हूँ, ऐसे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इन चार के माध्यम से पर पदार्थ से अपने संबंध जोड़ के रखता है। आचार्य देव ने जीवा जीवाधिकार में दो मुद्दे उठाए, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि के निषेध का, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के निषेध का प्रकरण उठाया, दो हिस्सों में बांट दिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि समय सार का जीवाजीवाधिकार ही 144वीं गाथा तक चलता है। ये तो अंदर का डिवीजन है, क्योंकि जीव अजीव जीव का नहीं है, अजीव जीव नहीं है, ये तो जीवाजीवाधिकार में बताया, और अजीव का कर्ता जीव नहीं है ये कर्ता कर्म अधिकार में, और अजीव का भोक्ता जीव नहीं है ये कर्ता कर्म अधिकार में। तो इस तरह बात तो जीव और अजीव इन दोनों की ही रही ना, इसलिए 144वीं गाथा तक जीवा जीवाधिकार ही है। कितना सुंदर वर्गीकरण है, कितना सुंदर बंटवारा है। अब देखिए हमें चंद्राचार्य की विशेषता, काय के लिए अपन ने इतनी मेहनत की है जे? क्या पिछले दिलीचंद जी याद है कुछ? के शुद्ध का अर्थ है कर्ता कर्म अधिकार में सकल कार्य चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण है ऐसा क्यों किया, और जीवाजीवाधिकार में जीव के नरक नारकादि विशेष और अजीव आश्रय बंध संबंध निरा मोक्ष इनसे भिन्न ऐसा क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर खोजने में अपन ने इतनी व्यायाम की है। क्यों याद था वही के वही आ जाए सुबोध जी, ठीक है ना? अभी ना ख्याल बात, इसके लिए अपन ने ये चार चीजें समझी है। तो कहते हैं कि ये ही गाथा जो जीवाजीवाधिकार में है 38वीं, इसलिए यहाँ पर 9 तत्वों से भिन्न है ये बताया, इसमें एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का निषेध किया, और वो चूंकि कर्ता कर्म अधिकार है इसलिए शुद्ध में कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया। अशुद्धि दो प्रकार की अथवा चार प्रकार की, एक पर में एकत्व बुद्धि रूप अशुद्धि, एक ममत्व बुद्धि रूप अशुद्धि, एक कर्तृत्व बुद्धि रूप अशुद्धि और एक भोक्तृत्व बुद्धि रूप अशुद्धि, चार प्रकार की अशुद्धि हुई। तो दो प्रकार की अशुद्धि का निषेध जीवाजीवाधिकार में है, अदरवाइज इसे आप रंग भूमि जो भी नाम आपको देना हो पूर्व रंग इसमें है, और कर्ता कर्म संबंधी अशुद्धि और भोक्ता भोग संबंधी अशुद्धि का निषेध कर्ता कर्म अधिकार में है। 73वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है, इसलिए वह ऐसा अर्थ किया, और ये जीवाजीवाद की अधिकार की गाथा है अथवा पूर्व रंग की गाथा है, इसलिए यहाँ ऐसा अर्थ किया। देखो जगह बदल जाने से कितना फर्क पड़ जाता है। देखो आपने पूछा 8:30 बज गए, मैंने कहा नहीं, तो नहीं का क्या अर्थ है? 8:30 नहीं बजी, अर्थ है क्या? नहीं। फिर आपने पूछा कि मैं चला जाऊं, तो मैंने कहा नहीं, इसका क्या अर्थ है? 8:30 बज गए, नहीं तो दोनों ही है, और मैं ही ने बोला है, लेकिन दोनों नहीं का अर्थ दो जगह अलग अलग हो गया ना, कैसे हो गया? प्रकरण कैसे? प्रकरण से हो जाता है, अर्थ प्रकरण से बदल जाता है भाई साहब। नहीं तो दोनों जगह कहा, लेकिन अब आपने टाइम पूछा था कि 8:30 बज गए, तब नहीं कहा था मैंने नहीं बजे, और जब आपने पूछा चला जाऊं, तो वह जाने के निषेध रूप नहीं है, समझे? नहीं तो एक है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने उदाहरण दिया सैंधव। इस सैंधव शब्द के का अर्थ होता है सिंधु देश में पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, जो सिंधु देश में उत्पन्न हो उसे बोलते सैंधव। तो ये जो लाहौरी नमक, ये लाहौर जो सिंधु देश के पास है, सिंधु देश ही है, तो इसलिए सैंधे नमक को बोलते हैं सैंधव। सिंधु देश में उत्पन्न हुआ नमक, उसका नाम क्या है? सैंधव, माने सेंधा नमक जिसे आप बोलते हैं। और उसी सिंधु देश में माने कारुल के आसपास बहुत बढ़िया घोड़े भी होते हैं, इसलिए सिंधु देश में उत्पन्न हुए घोड़े को भी सैंधव कहते हैं। अब सिंधु देश में जो जो उत्पन्न होगा सभी को सैंधव कहेंगे ना, कहते ना, आखिर वहां के पैदा होने वाले आदमियों को सिंधी कहते ही है ना, कहते क्या नहीं कहते? तो वहां जो जो चीज पैदा होगी वो सबको सिंधु वाला सिंधु जाता ऐसा बोलेंगे कि नहीं? अब उन्होंने कहा सैंधव माने क्या? नमक का घोड़ा। तो उन्होंने कहा कि रसोई में बैठे हो, दुपट्टा डालकर थाली पर बैठ गए हो, और यदि वो बोले कि सैंधम माने तो वहां नमक लाना, और यदि कमर कस के और तरकस मरकस बांध के बक्कर बांध के और खड़े हो राजा साहब और वो कहे कि सैंधम आने तो नमक मत लाना घोड़ा लाना, तर्कन के हिसाब से बदल जाती है ना बात। कहां सैंधव का अर्थ नमक है और कहां सैंधव का अर्थ घोड़ा है, ये उदाहरण मेरे फैक्ट्री का नहीं है, ये तो आचार्य पूज्यपाद का, ऐसा पंडित लोग बैठे हैं पूछ लो, हितेशी जी बैठे हैं, उत्तम चंद जी बैठे हैं, आपको एक बात बताऊं इतिहास की बहुत गुप्त बात बता दूं, लुलीचंद जी ये प्रकाश चंद जी हितेशी जी भारिल है और ये तुम्हारा उत्तम चंद जी भारिल है। अरे मैं तो प्रगट भारल हूँ, ये छुटे भारल हैं। बस इतने भाई, अरे अभिनंदन प्रगट कुमार जी भी भारल हैं। अबे तो है ही, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ जो स्टेज पे बैठे उनकी बात कर रहा हूँ, ये पंडितों की बात कर रहा हूँ। तो क्या बात चली थी अपनी, सिंधु दे सैंधव, तो घोड़ा भी सैंधव है और नमक भी सैंधव है, तो किस प्रकरण में क्या लगाना वो सोचना। अमरचंद जी ऐसे ही शुद्ध शुद्ध तो सब है, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार का शुद्ध है कर्तृत्व बुद्धि से रहित, भोक्तृत्व बुद्धि से रहित, और जीवा जीवा अधिकार का शुद्ध का अर्थ है एकत्व और ममत्व बुद्धि से रहित। तो परद्रव्य में पर सात तत्वों से भिन्न आत्मा, तो परद्रव्यों से सात तत्वों से भिन्न बताया, यह शुद्ध का अर्थ है। और उनका सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान का भेद का निषेध किया, मैं करता हूं तुम कर्म, मैं करण तुम कर्म, ऐसा चक्कर नहीं चले, क्योंकि वो कर्ता कर्म संबंधी प्रकरण है, तो वह कर्ता कर्म संबंधी मान्यता का नाम है अशुद्धि और उसके निषेध का नाम है शुद्धि, और यहाँ जीवा जीवाधिकार है तो परम एकत्व बुद्धि का नाम है अशुद्धि और उससे भिन्नता की अनुभूति उसका नाम है शुद्धि। क्यों ठीक है, अब एक बात और इसमें रहस्य की है, मैं ज्यादा मुमुक्षुओं को ही देख रहा हूँ इसलिए प्रकरण ले रहा हूँ, यदि आपको कठिन पड़े तो मुझे बता देना तो फिर मैं थोड़ा सा और सरल कर दूंगा, उसमें क्या थोड़ा सा बस बदलना पड़ता है, रेडियो में बदलना पड़ता है ना थोड़ा सा, चावल वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं, स्टेशन बदलना पड़ता है, क्यों नहीं बदल, एक सेकंड में आप देखो ना कि यहाँ से एक जगह आपने आकाशवाणी पे लगा रखा है तो वहां आता है ये आकाशवाणी है, अब आप देव की नंदन पांडे से समाचार सुनिए, तो थोड़ा ही घुमा दो तो बगल में से आता है क्या ये पाकिस्तान रेडियो है, अब आप हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री कहते थे अभी यार वजीर आजम बोलने लगते कि नहीं बोलने लगते, लेकिन मैं वो सब मोक्षु मोक्षु दिख रहे, इसलिए मैं थोड़ी गंभीर चर्चा आपके सामने जो महत्व की है वो आपके सामने रख रहा हूँ, यदि इसमें कुछ दिक्कत हो ना धन कुमार जी है? तो आप बोलना मेरे को। हाँ क्या हुआ देखो, अब दूसरी बात नर नार का जी विशेष और अजीब, ये कैसे लिखे, ये क्यों लिखते हैं, इस सात तत्व से अथवा नौ तत्व से भिन्न भगवान आत्मा ये बात करते ना, तो तुम चंद जी क्या बोलना चाहिए था, नव तत्व गतत्वी अदय के तम न मुंचती, नौ तत्व में भी जाकर जो एकत्व को नहीं छोड़ती है ऐसी मैं आत्मज्योति हूँ, तो शुद्ध माने क्या, ये नौ तत्व है ये भेद है और भगवान आत्मा अभेद, तो भेद सो अशुद्धि और अभेद सो शुद्धि, अब ये नौ तत्व में अजीब आसरा बंध सम्मा निद्रा और मोक्ष इनके तो पूरे नाम ले लिए, और जीव के लिख दिए नर नारकादि विशेष, लिखे क्या नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिखा, अजीब के भी विशेष लिखते क्या, पुद्गल आदि विशेष, आश्रम के भी विशेष लिखते, मिथ्या कवृद्धि आदि विशेष, क्या बंध के भी विशेष लिखते, क्या संवर के भी विशेष लिखते, गुप्ती समिति आदि विशेष, विशेष तो सबके हैं क्या नहीं है, निद्रा के भी विशेष, सभी भाग विभाग जो भी लिखना थे, मोक्ष के भी लिखते विशेष, द्रिपद अकेले जीव के विशेष क्यों और बाकी के कॉमन क्यों, ख्याल में है ना मेरा प्रश्न क्या है, ये प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर तो समझ में आएगा, सोगानी जी क्या प्रश्न कर रहा है, पहले का प्रश्न वो था कि दोनों में अलग अलग अर्थ क्यों किया। अब दूसरा प्रश्न एक है जीव के विशेष क्यों। अरे भाई हमने 9 आदमियों को निमंत्रण देना हो तो हम कहें साहब कोमलचंद साहब आपको आना है, खबरा जी साहब आपको आना है, प्रकाश जी आपको आना है, समय को हितेश जी आपको और आपके बच्चे को दोनों बच्चों को साथ में लाना है। कैसा आप हितेश जी से ऐसा कहा हमसे क्यों नहीं कहा, बच्चे तो हमारे भी हैं, क्यों आता क्या नहीं आता। ये तो सबसे एक कहो तो ये 9 तत्वों से भिन्नता की बात करी तो जीव के भेद क्यों कर दिए और अजीब का भेद क्यों नहीं किया, आसर का क्यों किया, निसंबर का क्यों नहीं किया। अशोक जी ख्याल है ना किताब ताब है क्या नहीं, वो तो गुरुदेव के साथी की वो पद्धति तो क्यों। अरे भाई साहब यदि वो पद्धति कायम रखते तो तुम्हें भी फायदा होता, इतनी ही जनता में पंडाल भर जाता। अंग टिकती रखते सांस रखते जगह नहीं मिलती और हमें भी हमारा भी भला होता, क्योंकि हम 500 समय साल लाते तो भी वो बिक जाते अभी तक। अब उधर जाते हैं क्यों भैया कह जाए, अभी तो पंडित जी ठंडा चल रहा है, जब छावड़ा जी की लोहारिया जी कृपा होगी तब हमारा गर्म होएगा। ये लोग कृपा करते क्यों नहीं, क्या चक्कर है कोमल चंद जी, यहाँ होते ना तो दिलवानी पढ़ने की आदत पड़ती तो देखते भाई साहब। अब हम एक एक पेज की एक एक पंक्ति पंक्ति का एक कोमा फुल स्टॉप यहाँ क्यों लगाया वो बताएं, और तुम्हारे पास देखने को है ही नहीं तो हमें भी मजा नहीं आता, तो क्या बताएं। क्यों तुम चंद जी लिखा कर नहीं लिखा, देखो इसमें जीव के नर नारक आदि विशेष और फिर अजीब आशा बंध समय निद्रा और मोक्ष इनसे भिन्नता उसका नाम शुद्धता, ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा। तो ये जीव के विशेष क्यों गिना दिए किन्नू भाई, जीव के विशेष क्यों गिना दिए और अजीब के विशेष क्यों नहीं गिनाए कबू चंदी, आसव के विशेष क्यों नहीं गए, वो तो 57 प्रकार का है और संबर भी 57 प्रकार का है, उनके भी विशेष गिना देते। नहीं भाई साहब वहां जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत थी क्योंकि जीव प्रदूषित सुनी है। हम कहे जीवों के 9 तत्वों से भिन्न वो शुद्ध, तो जीव भी जीव से भिन्न क्यों, तो यह चक्कर खड़ा होता है कि ये जीव अजीब से भिन्न तो समझ में आता है, आश्रम से भिन्न भी समझ में आता है, संबंध निद्रा और मोक्ष से भिन्न भी समझ में आता है, लेकिन जीव को जीव से भिन्न कहने का क्या मतलब है, यह चक्कर खड़ा हो जाएगा। अपने आत्मा को अपने आत्मा से भिन्न कहना है कि क्या कहना है, इसलिए उन्होंने उसके भेद किए। ख्याल में है ना, एक तर्क। दूसरा कि अरे साहब जीव से भिन्न तो पर जीवों से भिन्न ले लेंगे हम, ठीक है ना गुली जी, तो हम ऐसा ही करते हैं कि पर जीवों से भिन्न ले लेते हैं फटाफट कबूचंद जी, हमसे जो पर जीव है उनसे भिन्न भगवान आत्मा, तो वो जीव से भिन्न हो गया। भाई जीव से भिन्न जीव को कैसे कहना, ऐसा आचार्य का वाक्य है कि उस जीव से भिन्न और कौन सा जीव है जिस जीव से तुम इसको भिन्न बता रहे हो, क्यों भिन्न जी आता कि नहीं आता, उस जीव से भिन्न ऐसा और कौन सा जीव है कि जिस जीव से तुम इसे भिन्न बता रहे हो, तुम जीव को जीव से भिन्न बता रहे कैसे हो गया। अरे भाई तंगी तमार ब्राह्मण को छुए तो उसे नहाना पड़े, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण को छुए और नहाना पड़े कैसी बात करते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गंगी तमार छुए तो नहाना मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान में रहना, यदि ऐसा कहूंगा तो, लेकिन मैं तो उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। अब उदाहरण तो मैं भूतकाल से भी ला सकता हूँ, ये थोड़ी के वर्तमान से ही लाऊं, समझ में आया कि नहीं आया। भाई अजीब से शरीर से जीव को भिन्न कहो, राग द्वेष से भिन्न कहो, केवल ज्ञान से भिन्न कहो, लेकिन तुम जीव से जीव को भिन्न कहने का क्या मतलब है। तो पर जीव जीव तो अनंत है ना, ठीक है, तो मैं सिद्ध भगवान से भी भिन्न हूँ, ऐसा होगा जीव से भिन्न, ये बात यहाँ नहीं है, इसके लिए ये बात लिखी है। गुरुदेव की भाषा में कहूंगे यही बात आई नहीं, ये बात आई नहीं, आई जुदी बात है। क्या जुदी बात है, ये बात नहीं, दूसरे जीवों से भिन्नता नहीं बताना है। तो दूसरे जीवों से भिन्न है कि नहीं है, कि है तो हमने अजीब में डाल दिया दूसरे जीवों को, तो कि जिसमें हमारा ज्ञान दर्शन नहीं वो हमारे लिए अजीब ही है, वो तो हमारे अजीब में चले गए। यहाँ ये सब जीव तो चले गए अजीब में, सिद्ध भगवान तक तो चले गए अजीब में। अब ये कौन सा जीव बचा है कि जिस जीव से भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताना है? राजी
बोलो साहब। ये नर नारकादी कह के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि ये व्यवहार जीव है, ये जो भेद वाला है, ये जो चले फिरे खाएं पिए शरीर को धारण करें, स्थिर से हैं, स्थावर हैं, संसारी हैं, मुक्त हैं, ये क्या है सब? ये सब व्यवहार जीव है और यहाँ पर निश्चय जीव की बात चल रही है। तो इस व्यवहार जीव से निश्चय जीव को भिन्न बताना है। ये परजीव से अपने जीव को भिन्न नहीं बताना है, वो तो अजीब में चला गया। तो कौन? अपने ही जीव के दो भेद, एक निश्चय जीव और एक व्यवहार जीव। तो अपना निश्चय जीव भी अपने व्यवहार जीव से जुड़ा है, इसका नाम यहाँ शुद्ध है। ये जो जो भेद है ना नर नारकादि पर्याय, तो ये पर्याय वाला जीव इसे व्यवहार जीव बोलते हैं। क्यों ये व्यवहार जीव और निश्चय जीव ऐसा क्यों ले रहे उत्तम चंद जी? क्योंकि सारा प्रकरण उठा के देखो ना आगे पीछे से, व्यवहार का निषेध करके निश्चय की सिद्धि करते आ रहे नहीं आ रहे हैं? क्यों तो अरे वहाँ कह के आए थे ना व्यवहार जीव का निषेध करके आए थे कि नहीं आए थे? 27वीं गाथा में कहा था व्यवहार नहीं हो भाषा जी जीवो देहो अवधि खलु एक को, यहाँ देह को तो अजीब में डाल दिया, ये व्यवहार नहीं तो यहाँ चलेगा नहीं। क्यों ख्याल में आगे नहीं? तो नर नारकादि पर्याय में जो 14वीं गाथा में कहा था कौन सा वो बोलता ना कौन सा अनन्य वाला अन्य अन्य और भिन्न से जो अनन्य है पंडित जी अन्य में 14वीं 15वीं गाथा में उसकी ये बात है कि ये जो नर नारकादि पर्याय है नारकी जीव मनुष्य जीव त्रंच जीव देव जीव स्थावर जीव तृथ जीव संसारी जीव सिद्ध जीव ये आदि में सब लोग व्यवहार से अपने ही जीव के भेद है। हमारे और तुम्हारे जीवों के अंदर भेद नहीं है। मेरी संसार पर्याय से भेद करना, उसमें चार गतियों से भेद करना मेरे जीव में, ख्याल में आए ना? तो व्यवहार जीव का निषेध है और इसलिए क्योंकि वो परमार्थ जीव तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे की जो 39 से गाथाएं आएंगी ना तो बार बार कहेंगे ये परमार्थ जीव नहीं है, ये वास्तविक जीव नहीं है। तो परमार्थ जीव को व्यवहार जीव से भिन्न बताने के लिए, ख्याल में आए ना, ओ उस जीव क्या बोलो व्यवहार की परिभाषा है वो दे दी, कौन सी नर नारकादि जीव के विशेष, तो यानी जीव में के विशेष का निषेध करना, सामान्य जीव का निषेध नहीं करना। क्या लिखा? जीव के विशेष, उसका नाम है यहाँ जीव, जिस जीव से भिन्न जानना है और जिस जीव को भिन्न जानना है उसका क्या नाम है? सामान्य। अरे समझ, क्या नाम है भाई साहब आपका? चित्रंजन जी, अभ्यास पढ़ते हैं थोड़ा स्वाध्याय है, ख्याल में आई नहीं ये बात मैं जो कहता हूँ? ये व्यवहार जीव से ये एरिया हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ गया ना, तो मेरा संपर्क कम है, इसलिए मैं लोगों को कम पहचानता हूँ। भाई फेस थोड़ा बहुत पहचानता हूँ लेकिन नाम से नहीं जानता। अकेली यही बात नहीं है कि दूर पड़ गया इसलिए मैं कम आता हूँ इसलिए नहीं जानता हूँ, तो आप लोग भी कम आते हो दूर पड़ जाने से, इसलिए भी नहीं जानता हूँ। क्यों जानने के उपाय तो दो ही है ना सबोध, तो मैं आऊँ आपके पास ज्यादा तो जान पहचान हो, आप आए मेरे पास तो जान पहचान हो, नहीं हुई है तो दो ही तरफ से थोड़ी बहुत गड़बड़ है। लेकिन भाई साहब गड़बड़ आपकी तरफ से ज्यादा है, मेरी तरफ से कम है। क्यों दुलीचंद जी? क्योंकि मैं तो पराधीन हूँ, क्योंकि आप जब बुलाओ तब आ सकता हूँ। आप स्वाधीन हो, बिना बुलाए भी आ सकते हो, जहाज निमंत्रण तो भी आ सकते हो, विद्या विज्ञान जनपद प्रदर्शक में पढ़ करके वहाँ से लग रहा है वहाँ पंच कल्याण है, आ सकते कि नहीं आ सकते? मैं नहीं आ सकता हूँ, आऊंगा तो अभी देखो क्यों क्यों साहब क्या बात क्या बात क्यों होता क्या नहीं होता सच्ची बात नहीं। ऐसा हुआ कि वो अशोक नगर में 5 गजरथ थे, अब मैं अशोक नगर में 9 साल सवा 9 साल रहा था पंडित जी, तो वहाँ वो जो विरोधी ग्रुप के भी जितने लीडर है ना वो सब मेरे विद्यार्थी, क्योंकि मैं वहाँ पर एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल था और सबको उसमें से पढ़ना पड़ता था और मेरे पास संस्कृत सब्जेक्ट था जो अनिवार्य सब्जेक्ट था हिंदी संस्कृत, इसलिए 4-4 सेक्शन भी होते थे तो मुझको ही पढ़ाने पड़ते थे। तो हर कोई आदमी ऐसा नहीं निकल सकता था कि उस जमाने में जो 9th-10th क्लास में 11th में पढ़ा हो उस स्कूल में और जिसे मैंने नहीं पढ़ाया। 9 साल का लंबा पीरियड,
तो उनमें सब विद्यार्थी वो उस ग्रुप के लीडर भी और इस ग्रुप के लीडर भी सब मेरे विद्यार्थी। ये बाबूलाल जी साहब बैठे, इन्हें पूछे सब, तो वहां मेरे पास आए सब, मूर्तियां लेने आए तो मेरे पास आया, सबने बहुत निमंत्रण दिया कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। हाँ 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 मैं आऊंगा आऊंगा, क्या करूँ क्या। तो वो कह गए हमें तो पंडित जी साहब ने मंजूरी दे दी, पंडित जी साहब जरूर आएंगे जरूर आएंगे। उन्होंने जाके वहां प्रचार कर दिया, मुख्यों की चिट्ठी आई कि आप यहाँ आ रहे और हमें पता ही नहीं है। तब मुझे पता चला कि मुझे वहाँ जाने के लिए पहले इनको पता करना जरूरी है, इनकी परमिशन लेना जरूरी है। सच्ची है, मुझे पता नहीं था, एक दफा सुना था मैंने, चरण सिंह मुख्यमंत्री था ना यूपी का, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम बनाया तो क्या मेरे से नहीं पूछा, इसलिए मैं व्यवस्था नहीं करूंगा। तो पाया था कि मुख्यमंत्री से पूछे प्रधानमंत्री जाए देश में, तो प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम बनाए तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि वो सारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करे। इस पर तो बहस हुई थी संसद में, इतना तो मैंने सुना था, लेकिन अब मेरे को पता चला कि कहीं जाऊं मैं छिंदवाड़ा आऊं तो मुझे पहले मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा और फिर उनकी परमिशन लेने पड़ेगी सुशब्द भाषा में कि आऊं कि नहीं आऊं। उसमें लिखा था कि आप, मैंने सुना है कि हाँ आप पधार रहे हैं, ऐसा बहुत जोर से प्रचार है, हम लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आप सोच लो वातावरण बहुत खराब है। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया कि जवाब दे रहा था झगड़ा खड़ा होता, क्योंकि वो वहां कहते हमारे भाई तो चिट्ठी है कि नहीं आ रहे, वे कहते हमसे तो वचन दिया था कि आ रहे, क्यों मैं कहा तो झगड़ा पड़ता। तो मैं क्या हुआ कि वो व्यवहार नहीं से वचन दिया था, मैं व्यवहार नहीं से हो गया, समय हो गया। तो ये आप ख्याल है शुद्धि का अर्थ क्या, यहाँ पर जो जीव का व्यवहार जीव उसका नाम अशुद्धि, देखो समझे ना, और उससे मैं भिन्न हूँ इसका नाम शुद्धि। तो इस तरह कितने कितने बारीक बारीक अज्ञान आचार्य देव हमारे अंदर से निकालना चाहते हैं समय सार की एक एक गाथा में और टीका में। तो हमारे ख्याल में आए कि भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है, जो ध्यान का ध्येय है, जो परम शुद्ध निश्चय का ज्ञान का गे है, ऐसा आत्मा ही हमारे आश्रय भूत तत्व है और उसके आश्रय से ही कल्याण होने वाला है।